चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ इंशाल्लाह ताला, जो है मक्का की गलियों में इंशाल्लाह ताला, उसको में आज देखते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है।
चलते हैं हमारी सीरीज की तरफ, मक्का की गलियों में चल के देखें। आज एक अजीब ही सूरत हाल थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ ले जाना चाह रहे थे, मगर जैद इस मामले में कुछ परेशान नजर आ रहे थे। वो फरमाने लगे, आप कुरैश के पास कैसे जाएंगे, उन्होंने तो आपको निकाल दिया। जैद की आवाज में बहुत तशवीश थी, बहुत फिक्र थी, और क्यों ना होती, अब तक कुरैश तक ये बात पहुंच चुकी थी कि मेरे नबी के साथ ताइफ में क्या हुआ। वो तो मजीद दलेर हो गए होंगे। ऐसी सूरत हाल में आपका मक्का में दाखिल होना किसी बड़े खतरे से खाली नहीं था, ये तो खुद को हलाकत के मुंह में डालने के बराबर था। और मेरे नबी को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि अब कुरैश आपको नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे और पहले से भी ज्यादा सख्ती से आपसे निपटेंगे। इसके बावजूद आपने जैद से फरमाया, ए जैद, तुम जो हालत देख रहे हो, अल्लाह ताला इसमें कुशादगी का और निकलने का कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वो बिला शुबा अपने दीन की मदद करने वाला है और अपने नबी को गालिब करने वाला। दोनों चलते चले जा रहे थे और चलते चलते हिरा के करीब पहुंच गए। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब मेरे नबी गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। सबके महबूब थे, आंखों के तारे थे, सादिक और अमीन कहलाते थे। और आज हालात कैसे बदल गए कि मक्का में दाखिल होना भी एक इतना बड़ा मसला बन चुका था। अभी दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि एक आदमी करीब से गुजरता हुआ दिखाई दिया। मेरे नबी ने उसको बुला भेजा। वो आया तो पूछा, अगर मैं तुम्हें एक पैगाम देकर भेजूं तो क्या तुम उसको पहुंचा दोगे? वो आदमी कुछ भला मालूम होता था और अहले मक्का में से ही था। वो बोला, जी हाँ। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ फिर अखनस बिन शुरैक के पास और उससे कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पनाह दोगे और मुझे मेरे रब का पैगाम पहुंचाने में मदद करोगे ताकि मैं बना दोगे तो मैं अपने रब का पैगाम पहुंचा सकूंगा। वो शख्स मेरे नबी का पैगाम लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गया, और मैं हैरान थी कि आज ये नौबत भी आ चुकी कि आपको एक काफिर से पनाह की दरख्वास्त करनी पड़ रही है। आप जो दुनिया के कामिल तरीन इंसान, आप जो अंबिया के सरदार, अल्लाह ताला के महबूब, आप पर इतना सख्त वक्त आ चुका है। हम तो अपने जमाने में जरा दीन का काम कर लेते थे तो समझते थे कि अब तो हमारे रास्ते में कोई परेशानी कभी आनी ही नहीं चाहिए, कोई तकलीफ हमें छूनी नहीं चाहिए। आखिर हम इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं, और यहां मेरे नबी ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के दीन की खातिर लगा दिया। आपने अपने लिए तो कुछ भी बचा के नहीं रखा, और इस रास्ते में क्या कुछ नहीं सहा, इसके बावजूद आपके साथ जो सलूक हो रहा है, जो हालात हो रहे हैं, आपके लिए तो रास्ते खुल जाने चाहिए थे, आपके लिए तो ये फूलों की सेज होनी चाहिए थी, आपको तो मक्का का बादशाह होना चाहिए था। मगर आज मुझे समझ आया कि मकाम और मर्तबे ऐसे ही नहीं मिल जाया करते, सब कुछ लगा के भी पत्थर खाने पड़ते हैं, सब कुछ कुर्बान करके भी शहर से निकाल दिया जाता है, लोगों की खैर ख्वाही करने के बावजूद दुश्मनियां सहनी पड़ती हैं। और लोगों के सख्त रवैयों के बावजूद चलते रहना पड़ता है सिर्फ इस भरोसे पे कि वो रब तो मुझसे राजी है, उसकी खातिर सब सह जाऊं। और हौसले से खड़े रहना पड़ता है बगैर अल्लाह ताला से कोई शिकवा किए हुए, बगैर माथे पर शिकन डाले हुए। ये वाकई मेरे नबी का ही काम हो सकता है। अजीम लोगों के हौसले भी बड़े अजीम होते हैं, और इनके दिल भी बहुत बड़े होते हैं। ये मुझ जैसे छोटे लोगों का काम कहाँ। इसी वजह से तो इनके मकाम अल्लाह ताला के यहाँ इतने बुलंद हैं। अभी मैं इन्हीं सोचों में थी कि देखा वो शख्स वापस चलता हुआ आ रहा है। मैं बड़ी पुरुमीद थी, जरूर काम हो गया होगा, आखिर कौन हो सकता है जो वो मेरे नबी को पनाह ना दे। सब जानते हैं आपका किरदार, आपका अखलाक, मगर ऐसा क्यों है कि ये शख्स ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। वो आकर सीधा मेरे नबी के पास गया और बोला, मैंने आपका पैगाम दे दिया, मगर वो कहता है कि मैं तो कुरैश का हलीफ हूं, और हलीफ किसी कुरैश के आदमी को पनाह नहीं दे सकता। मैं हैरान थी, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है कि वो इनकार कर दे। मेरे नबी ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और बगैर किसी रद्दे अमल को जाहिर किए हुए फरमाया, तुम दोबारा जाओगे। वो झट से बोला, जी हाँ। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ फिर सुहेल बिन अमर के पास जाओ और उससे कहो, मोहम्मद तुमसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे पनाह दोगे कि मैं अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। वो आदमी फौरन खड़ा हो गया और एक नई उम्मीद के साथ दोबारा मक्का के रास्तों में गुम हो गया। इस दफा मैं कुछ परेशान थी, मेरा दिल खौफजदा था इस बात से कि अगर उसने भी इनकार कर दिया तो क्या होगा, अगर वो भी ना माना तो मेरे नबी कहाँ जाएंगे। अभी अभी तो ताइफ वालों ने उनके साथ ये सलूक किया, अब मक्का का भी रास्ता बंद हो गया तो किधर पलटेंगे, इन पे क्या गुजरेगी, इनका दिल कितना टूटेगा, इनके लिए हालात कितने मुश्किल हो जाएंगे। अपने ही शहर में, अपने ही घर में, अपने ही प्यारों के पास जाना इतना मुश्किल हो गया। इस दफा ज्यादा देर नहीं लगी थी कि वो बंदा मुझे दूर से आता हुआ दिखाई देने लगा। या अल्लाह, कुछ अच्छी खबर ही लेकर आया हो। वो आया और बोला, सुहेल ने कहा है बनू आमिर बिन लुआई बनू काब के खिलाफ पनाह नहीं दे सकते। मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा? मुझे कभी भी 21वीं सदी में रहते हुए इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसे भी होता है। और जब ऐसे होता है कि आपको कोई कबूल करने वाला ना हो, आप लोगों के लिए अनवांटेड हो, तो क्या गुजरती है, कैसी बेबसी है। अल्लाह ताला की जमीन तो बहुत बड़ी है, मगर इसके बावजूद इस वक्त लग रहा था कि बहुत तंग हो चुकी है। अगर किसी पनाह के बगैर मेरे नबी मक्का में दाखिल हो जाते तो ऐन मुमकिन है कि ये लोग जान से ही मार दें, या पता नहीं क्या कदम उठा लें। ये खतरा वाकई हकीकी था। और पनाह लेना चाह रहे हैं तो कोई देने को तैयार नहीं। अगर अपने ही लोग पनाह देने को तैयार नहीं तो और कौन रखेगा इनको? मैंने देखा मेरे नबी का चेहरा बदस्तूर पुरसकून था। कोई पैनिक नहीं था, कोई बद्दुआएं नहीं थी उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। अब मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा क्या तुम वापस जा सकते हो? कितना भला आदमी था ये। शायद ये भी मेरे नबी की मजबूरी को समझ चुका था। बोला, जी हाँ। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा फिर मुतहम बिन अदी के पास चले जाओ और उससे भी जाके यही कहो। वो शख्स उठा और तेजी से निकल खड़ा हुआ। मैं उसको दूर तक चलता हुआ देखती रही और दुआएं मांगती जा रही थी, या अल्लाह तू मदद कर, अब ये इनकार ना लेकर आए। या अल्लाह तू तो बेबसों और कमजोरों का रब है, और ये तो तेरे नबी हैं। हमें तो कोई एक दफा रिजेक्ट कर देता था तो हम तो अपने जमाने में कैसे दिल हार देते थे, कैसे डिप्रेशन में चले जाते थे, कैसे मायूस होने लगते थे। और मेरे नबी जिन जैसा कोई भी नहीं, उनके साथ आज ये सलूक देख के मुझे लगा कि हम अपने आप को क्या समझते थे। मैं जानती हूं आसान नहीं है रिजेक्शन, मैं जानती हूं कि क्या गुजरती है जब इंसान को लोग रद्द कर देते हैं। और एक नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस दफा वो आदमी कदरे तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। या अल्लाह तू मदद कर, या अल्लाह तू मदद कर। वो तेजी से हांफता कांपता मेरे नबी के सामने आया और बोला, मुतइम राजी हो गया, वो आपको पनाह देने को तैयार है। मेरे नबी का चेहरा खिल गया, खुशी और इत्मीनान के आसार नुमाया थे। मैंने एक लंबी सांस खींची। कितने छोटे छोटे काम भी आज पहाड़ के बराबर हो चुके थे। छोटे छोटे माइलस्टोन्स, ऐसे लगता था पहाड़ों को सर करने से कम नहीं है। बज़ाहिर ये कोई बड़ी बात मालूम नहीं होती थी। आप इस जगह के शहरी थे, सिटीजन थे, और अपने ही मुल्क में दाखिल होना किसी सिटीजन के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसको किसी वीजा की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मगर यहां तो गारंटीज चाहिए, इसलिए कि ये लोग मेरे नबी को डिसओन कर चुके थे। अपने ही खानदान के एक शख्स को और ये अरबों की तहजीब के बिल्कुल खिलाफ था। मेरे नबी उठे और खुशी खुशी जैद के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। उधर आगे मुतइम अपने बेटों के साथ आपके इंतजार में खड़ा था। उसके 6-7 बेटे हथियार पहने हुए थे। अब मैं जान गई इस सोसाइटी में ज्यादा बेटे होना लोग अपनी शान और स्ट्रेंथ की अलामत क्यों समझते हैं। मुतहिम, आपको लेकर हरम की तरफ चलने लगा। ये एक छोटा सा कारवां था जो जब हरम पहुंचा तो मुतहिम अपनी सवारी के ऊंट पे खड़ा हो गया और ऐलान करने लगा है, कुरैश की जमात सुन लो, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा तुम में से कोई इनको जरना ना पहुंचाए। ये उसकी तरफ से मक्का में रहने का वीजा था जो उसने इशू किया था। मैंने देखा मेरे नबी हिजरे अस्वद के पास तशरीफ ले गए, उसको बोसा दिया और 2 रकत नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए। इस दौरान मुतइन और उसके बेटे चारों तरफ से आपको हिफाजती घेरे में लिए हुए थे। उन्होंने तलवारें गर्दनों में लटकाई हुई थी। मुतइन ने आपसे कहा, आप बेफिक्र होके तवाफ कर लीजिए। खुद वो अपनी तलवार लिए अपने बेटों के साथ मुताफ में बैठ गया। उसके बेटे खूब चाको चौबंद होके बैठे हुए थे। मैं उनको देख रही थी और मेरा दिल एहसास तशक्कुर से भरा हुआ था। मैं इनका एहसान कैसे दे सकती हूँ, मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। सारी उम्मते मुस्लिमा के ऊपर इनका ये कितना बड़ा एहसान है, कैसे हम भूल सकते हैं। इसने काफिर होके मेरे नबी का साथ दिया, हमारी तो नस्लें भी इनकी एहसानमंद रहेंगी। शायद मेरे जमाने का कोई शख्स कभी समझ भी ना पाए कि वो वक्त किस कदर नाजुक था जिस वक्त में मेरे नबी इस इंतजार में थे कि कौन उनको पनाह दे तो वो मक्का में अपने ही वतन में दाखिल हो सके। और इसका क्या माना होता है जब एक के बाद एक शख्स रद्द करता चला जाता है और फिर एक उम्मीद की किरण उठती है और कोई तैयार हो जाता है पनाह देने को। ये एहसास कैसा होता है और ये एहसान कितना बड़ा होता है। शायद उम्मते मुस्लिमा को तो इसका अंदाजा भी ना हो। मेरे नबी तवाफ करने लगे मगर अबू जहल से ये कहाँ बर्दाश्त होना था। वो मुतइम के पास गया और कहने लगा, तूने इनको पनाह दी है या इनका पैरोकार ही बन गया। मुतइम बोला, सिर्फ पनाह ही दी है। अबू जहल बोला, ठीक है, फिर तुमसे बेवफाई नहीं की जा सकती। मैं सोच रही थी दुश्मनी की भी कोई इंतहा होती है। वाकई ये शख्स इस उम्मत का फिरौन है। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई आपकी मदद करने के लिए उठे। वो मुतइम के पास ही बैठ गया यहां तक कि मेरे नबी ने तवाफ मुकम्मल कर लिया। आप वापसी के लिए चले तो मुतइम और उसके बेटे भी साथ हो लिए। आज की रात मेरे नबी मुतइम के घर में ही रहे। चंद दिन गुजरे होंगे कि हज का मौसम शुरू हो गया। लोग दूर दूर से पैदल और सवार मक्का की तरफ आ रहे थे और मेरे नबी ने अपना काम तेज कर दिया था। आराम तो बहुत ही कम करते थे। जब हज का मौसम आ जाता तो आप दावत का काम इतनी जोरों शोर से करते थे कि अरब के जिस नामी गिरामी शख्स की मक्का में आमद की खबर सुनते फौरन उसके पास तशरीफ ले जाते, उसे दावत इस्लाम देते। हज के मौसम में दावत देने का ये सिलसिला तो नबुवत के चौथे साल से ही जारी था, मगर इस साल बात कुछ अलग थी, क्योंकि इस साल अबू तालिब नहीं थे बल्कि बनू हाशिम का सरदार अबू लहब था। मेरे नबी अपने चचा अब्बास के पास गए और उनसे कहने लगे, मैं आप और आपके भाई अबू लहब के पास अपने दिफा की कुव्वत नहीं पाता, क्या आप मुझे कल बाजार की तरफ ले चलेंगे ताकि आप मुझे लोगों के कबीलों की जाए करार बता दें। मैं समझ गई, मेरे नबी जानते थे कि इस बार कुछ भी हुआ तो बनू हाशिम आपकी हिमायत के लिए खड़े होने वाले नहीं है, और फिर अबू लहाब से उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। सैयदना अब्बास राजी हो गए, फरमाने लगे, मैं कल आपको तमाम कबीलों के कयाम की जगह बता दूंगा जहां पे वो सब कबीले जमा होते हैं। अगला दिन जब आया, सुबह ही सुबह अब्बास मेरे नबी के साथ हो लिए, दोनों चले जा रहे थे। अब्बास को अभी मुसलमान नहीं हुए थे मगर मेरे नबी के हमदर्द थे, साथ देने वाले थे, मुखलिस थे। वो एक ऊंची जगह पे खड़े होके एक कबीले का नाम लेते जा रहे थे, ये किंदा है और ये इनकी जमात है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। आप जिसके पास भी पहले जाना चाहें चले जाएं। मेरे नबी ने कुछ देर सोचा, फिर किंदा से आगाज करने का फैसला किया। मैं अपने नबी के पीछे पीछे हो ली। आप जा तो रहे हैं मगर क्या वो मान जाएंगे? मैं सोचती जा रही थी, अगर वो ना माने तो क्या होगा? मैंने देखा मेरे नबी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनको आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। वो तो हर खास और आम तक एक ही बात पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए थे, लेकिन मुझे अपनी बेइज्जती बहुत फील होती थी। आगे से कोई टका सा जवाब दे देता था, कभी कोई बेइज्जत कर देता था, कभी कोई ऐसी बातें करता था बहुत ही तहकीर अमेज, जिससे मैं बहुत एम्बेरेस्ड फील करती थी। मेरे नबी चलते जा रहे थे और जब उनके करीब पहुंचे तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। इनको तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं, अपनी अना की परवाह नहीं, इसको पीछे रख के दावत के काम को आगे रखते हैं, और मेरे जैसे लोग हर वक्त अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, दावत का काम हमारे लिए कोई माने नहीं रखता। मुझे धड़का लगा हुआ था कि ऐसा ना हो ये भी ना माने और मेरे नबी को कुछ उल्टी सीधी बातें सुना दे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा होगा जो मान गया हो, वरना ज्यादातर लोग तो ये पैगाम सुन के ऐसे खून खार हो जाते थे जैसे किसी ने उनको कोई हलाकत का पैगाम सुना दिया हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने नबी के पीछे पीछे चलती जा रही थी। आप किंदा की कयामगा तक पहुंचे तो उनके लोग एक जगह बैठे बातों में मशगूल थे। आपने उनसे फरमाया, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले, हम यमन के रहने वाले हैं। पूछा, यमन के किस कबीले से? बोले, किंदा से। किंदा की किस शाख से? उन्होंने कहा, बनू अमर से। इस मुख्तसर तारुफ के बाद मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें भलाई की तलाश है? उनकी आंखें एकदम चमकने लगी, झट से बोले, वो क्या भलाई है? मेरे नबी ने फरमाया, तुम गवाही दे दो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नमाज कायम करो और जो कुछ अल्लाह के पास से आया उस पर ईमान ले आओ। उनमें से एक बोला, अच्छा लेकिन अगर हम ये मान जाते हैं और आप गालिब आ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? क्या हमें बादशाहत देंगे? मेरे नबी ने फरमाया, बादशाहत तो बेशक अल्लाह ताला के पास है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। ये सुन के वो बोले, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं एकदम परेशान हो गई। वो ही हुआ जिसका मुझे खदशा था। उनमें से दूसरा बोला, क्या आप इसलिए हमारे पास आए हैं कि हमारे इलाहों की पूजा से हमें रोक दें और हम सब अरब से कट जाएं जाएं जाएं, आप अपनी कौम के पास चले जाएं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। देखा, वो ही हुआ ना जिसका मुझे डर था। सख्त परेशान हो गई। हालांकि ये वो लोग थे जो अपनी नरमी और नवाजिश में मशहूर थे, और इनका ये रवैया। फिर उनमें एक आदमी बोला, ऐ मेरी कौम, इससे पहले कि कोई और तुम पर सबकत ले जाए, तुम मान जाओ। अल्लाह की कसम, अहले किताब बयान करते हैं कि एक नबी हरम से निकलेगा और उसका जमाना आ चुका है। मुझे एकदम उम्मीद सी होने लगी, शायद ये लोग मान जाए। मगर उसने तो अभी अपनी बात खत्म भी ना की होगी कि एक काना शख्स उठ खड़ा हुआ और बोला, सुनो मेरी बात, पल्ले बांध लो मेरी बात, इन्हें तो इनकी अपनी कौम ने निकाल दिया है, तुम इन्हें पनाह दोगे तो देख लो, फिर सारा अरब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा और ये सारे अरब से जंग मोल लेने के बराबर है। मैंने देखा मेरे नबी के चेहरे पे दुख के आसार नमाया थे। कहाँ कहाँ दिल नहीं कटता था, कहाँ कहाँ से रद्द नहीं किया गया, कहाँ कहाँ से दुत्कारा नहीं किया। कितनी बार इसी किस्म की बातें सुनने को मिली। मेरे नबी गमजदा होके खड़े हो गए और बोझल कदमों से लौटने लगे। मैं पुकार उठी है, लोगो रोको रोको इनको, ये तो खैर ही खैर है, लोगों ऐसा मत करो इनके साथ, इन जैसा कोई और भी नहीं। अरे तुम और मैं तो इनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। आज इनको तुम्हारी जरूरत है, इनको जाने ना दो। तुमने इनको अपना लिया तो दुनिया और आखिरत की सारी भलाई तुम्हारे कदमों में होगी, तुम्हारे नसीब खुल जाएंगे। मैं बोलती जा रही थी, लेकिन ये लोग मेरे नबी को वापस जाता हुआ देख रहे थे और उनके चेहरे बिल्कुल सपाट थे। यूं लगता था उनको कोई परवाह नहीं। मेरे नबी बोझल कदमों से अब बनू बकर के खैमों की तरफ चल दिए। मैं चीख उठी, नहीं बस करें प्यारे नबी, बस करें, ये लोग इस काबिल नहीं, क्या आप इनको दावत दें? आप खुद चल चल के इनके पास जा रहे हैं। आप तो इंसानियत के सरदार हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं, आप तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब हैं। आपको जरूरत नहीं कि इन जैसे लोगों के पास जा जाके बार बार रद होने की अजियत से गुजरे। आप थक गए होंगे, आप बैठ जाएं। मुझे बुरा लगता है जब ये लोग आपको धुतकारते हैं। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मेरे आंसू बहने लगे, मैं बेचैन हो गई, उससे नहीं सहा जाता था। अब भी अगर किसी ने ऐसी बात की तो क्या होगा? अगर मेरे प्यारे नबी, कितनी हमदर्दी रखते थे इन लोगों की, कितनी खैर ख्वाही भरी हुई थी इनमें, कि इनसे ये बातें सह सह के भी फिर खड़े हो जाते, फिर चल देते। अभी तक इतने सालों में मक्का में 100 मुसलमान भी नहीं थे, और हज पर आने वाले ये सब लोग कुरैश और पूरे जजीरा अरब से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। आपकी दावत कबूल करना इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। कौन अपनी दुनिया को कुर्बान करता है आखरत के लिए, और कौन इनको गले लगाएगा और अपना नुकसान करेगा इस बात। यहाँ तक आज का हमारा एपिसोड है, इंशाअल्लाह ताला चलते हैं नेक्स्ट अपने सेगमेंट की तरफ।
से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है।